पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और 13वीं पद संख्या में इस प्रकार लिखा हुआ है, सुनो तुम जो ये कहते हो, आओ हम आज या कल अमुक नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, फिर ये भी नहीं जानते कि कल तुम्हारे जीवन का क्या होगा। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर तक दिखाई देती और फिर अदृश्य हो जाती है। पवित्र बाइबल के इस वचन में परमेश्वर हमें हमारे जीवन की एक गहरी सच्चाई बता रहे हैं कि हमारा जीवन छोटा सा है और इस जीवन में हम एक सफर में हैं और हर एक सफर का अंत होता है और जीवन के सफर का भी एक दिन अंत हो जाएगा। और परमेश्वर अपने वचन से यही बता रहे हैं कि हमारा जीवन छोटा सा है, लेकिन जीवन के सफर का अंत कुछ अलग है। हर तरह के सफर का अंत हो जाता है, लेकिन जीवन के सफर का अंत कुछ अलग प्रकार का होता है। इस जीवन के सफर के अंत हो जाने के बाद हम अनंत काल के लिए एक जगह पे रहेंगे, और ये सच्चाई है। धर्मशास्त्र हमें सिखाता है कि 2 जगह ऐसी बनी हुई हैं जहां पे हमने अनंत काल के लिए रहना है, या तो स्वर्ग में या नरक में। इस दुनिया में, हमारे भारत देश में, हम सुनते हैं कि यहीं पे स्वर्ग है और यहीं पे नरक है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाता। ये धरती धरती है, स्वर्ग स्वर्ग है और नरक नरक है। और इस धरती पे अपना जीवन बिताने के बाद या तो हम स्वर्ग में रहेंगे परमेश्वर के साथ, या फिर हम नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। इस दुनिया के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि परमेश्वर इंसान बना, आदि अनादि सनातन परमेश्वर हमारे लिए मनुष्य बन गया, शब्द देह बना और हमारे बीच में उस शब्द ने डेरा किया, और उसका नाम यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह इस पूरे इतिहास के बीचों बीच खड़े हैं, और ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह इतिहास के बीचों बीच खड़े हैं, लेकिन इतिहास को अंत भी वो करने वाले हैं। इस इतिहास को एक नए इतिहास में वो लेके जाने वाले हैं। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि परमेश्वर इंसान बना, और इस इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु मसीह इतिहास के बीचों बीच खड़े हैं, और तीसरी बड़ी सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु मसीह इस इतिहास को खत्म करके हमें एक नए इतिहास की शुरुआत में लेकर जाएंगे, और वो तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आएंगे। बाइबल हमें बताती है कि वो दिन आने वाला है जब परमेश्वर नया आकाश और नई धरती बनाएगा। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर सब कुछ नया करने वाला है। परमेश्वर ने एक बार इस दुनिया को शुरुआत में उसने अच्छा बनाया था। जब उसने इस दुनिया को नया नया बनाया था तो दुनिया अति पवित्र थी। दुनिया की हर एक रचना में परमेश्वर की पवित्रता झलकती थी। इंसान का और परमेश्वर का बड़ा गहरा और पवित्र रिश्ता, गहरा संबंध बना हुआ था। लेकिन इस दुनिया की एक और सच्चाई है, और वो है शैतान। और शैतान ने इस पवित्र रिश्ते को तबाह करना चाहा, और शैतान इसमें कामयाब हो गया। इंसान ने शैतान की बातों में आके हमने पाप किया, और इंसान परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो गया। और इंसान के पाप का जो दंड है, उसका जो श्राप है, वो समस्त मानव जाति पर लगा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य इस दुनिया में अब जो जन्म लेता है वो पाप में जन्म लेता है। पाप कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम अपने जीवन में हम बढ़ते बढ़ते सीखते हैं। बाइबल बताती है कि मनुष्य जो है हम पाप में पैदा होते हैं। बाइबल में दाऊद ने कहा कि मैं तो अपनी माता की गर्भ में पाप में पैदा हुआ। पाप कोई ऐसी चीज नहीं है जो करके हम पाप करते हैं, हम पाप में पैदा होते हैं। पाप हमारे अंदर बसता है, और इसीलिए हम देखते हैं किसी भी छोटे बच्चे को हमें झूठ बोलना नहीं सिखाना पड़ता। पाप जो उसके अंदर है वही उसे झूठ बोलना सिखाता है, वही उसे जलन करना सिखाता है। और हर तरह की बुरी बातें, जैसे वो बच्चा अपने जीवन में बढ़ता जाता है वो बुरे काम करना खुद पकड़ लेता है। इसलिए भाइयों बहनों, परमेश्वर की इच्छा यही थी कि जो इंसान है, हम लोग, आप और मैं, हम परमेश्वर के साथ हमारा अटूट संबंध हमेशा के लिए बना रहे। और ऐसा ही उसने हमें बनाया था दुनिया की शुरुआत में, लेकिन हमारे पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया। हमने अपने मन में, वचन में और कर्म में हमने पाप किया और हमारे पाप के कारण हम प्रभु से टूटे हुए हैं। लेकिन कहानी यहां पे खत्म नहीं होती। परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर मोहब्बत है, परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम का सागर है, प्रेम से भरा हुआ है परमेश्वर। और इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना बनाई और समस्त मानव जाति को उसके पाप से निकालने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजा। परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा ताकि प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के पापों के लिए अपनी जान कुर्बान करे। आप सोचेंगे, परमेश्वर अपने बेटे को हमारे पापों के लिए क्यों कुर्बान करेंगे? इसके पीछे कारण यह है, यदि परमेश्वर को मानव जाति के पापों को माफ करना है तो परमेश्वर को एक पवित्र मेमना चाहिए, बेदाग मेमना चाहिए, जिसे परमेश्वर कुर्बान करे, जिसे परमेश्वर की वेदी के सामने हमारे लिए भेंट किया जाए, अर्पित किया जाए, जिसका लहू बहाया जाए। लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा पवित्र मेमना मिला ही नहीं परमेश्वर को, क्योंकि हर एक इंसान पापी है। बाइबल कहती है हर एक इंसान ने पाप किया है और हर एक इंसान परमेश्वर की महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। और क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसा कोई मेमना ही नहीं मिला जो बेदाग हो, जो पवित्र हो, जिसने पाप ना किया हो, इसलिए कोई भी इस लायक था नहीं जो हमारे लिए अपनी जान को देता, जो हमारे पापों को अपने ऊपर ले लेता। इसलिए परमेश्वर के पास इसका एक ही हल था कि उसे अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए देना पड़ा। और इसलिए परमेश्वर की योजना के अनुसार आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का सारा सिंहासन छोड़ के, स्वर्ग की सारी शानो शौकत छोड़ के आपके लिए और मेरे लिए इस दुनिया में उन्होंने जन्म लिया, गरीबी में जन्म लिया, जहां पे जानवर रहते हैं वहां पे जन्म लिया, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए। और प्रभु यीशु मसीह जब 33 वर्ष के हुए तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके पापों के लिए और मेरे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। भाइयों बहनों, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के सामने पाप करने के अनेकों मौके आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। बाइबल कहती कि वो हर तरह से वो परखा गया, लेकिन उसने कभी पाप नहीं किया। और क्योंकि उन्होंने कभी पाप नहीं किया, वो पवित्र और बेदाग मेमने परमेश्वर के सामने हमारे लिए ठहरे और उन्होंने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। सो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान कर दिए गए, वो मारे गए और वो गाड़े गए। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि वो जमीन में गाड़े नहीं रहे। अपने कहने के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह अपने मरने के तीसरे दिन जीवित हो गए और वो आज भी जीवित हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक कब्र ऐसी है जो कब्र खाली है, जिस कब्र में किसी मुर्दे को रखा गया, लेकिन वो मुर्दा जीवित हो गया और वो आज भी जीवित है। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम जब अपने जीवन में हम अलग अलग प्लान बनाते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम यहाँ रहेंगे, हम ये काम करेंगे, हम ये बिजनेस करेंगे, हमारे पास बहुत, हम अपने भविष्य के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम अपनी आखिरी मंजिल के बारे में सोचें, क्योंकि ये जीवन छोटा सा है। अभी हमने पढ़ा, बाइबल बताती है तुम्हारा जीवन एक भाप के समान है जो अभी है और कल खत्म हो जाएगा। हमारा जीवन कब खत्म हो जाए हम नहीं जानते। इसलिए परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम अपनी आखिरी मंजिल के बारे में सोचें। सबसे बड़ा सवाल अगर कोई इंसान इस दुनिया में अपनी आत्मा के लिए अगर पूछ सकता है तो वो यही है, मरने के बाद मेरा क्या होगा। भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि प्रत्येक इंसान को जीवन जीने का सिर्फ एक बार मौका मिलता है। हम बार बार इस दुनिया में अलग अलग रूप में हम नहीं आते हैं। बाइबल हमें इस प्रकार नहीं सिखाती है। बाइबल कहती कि हमें एक बार ये जीवन दिया गया है और इसके बाद हमारा न्याय होगा, इसके बाद हमें परमेश्वर के पवित्र सिंहासन के सामने हमें खड़े होना है और हमें अपने जीवन का लेखा देना है। और आप हैरान हो जाएंगे, हम जब परमेश्वर के सामने इस जीवन का लेखा देंगे तो हम अपने कर्मों के आधार पर हम परमेश्वर से अपने मोक्ष की प्राप्ति को नहीं मांग सकते, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारे भले कर्म, हमारे अच्छे कर्म भी उसके सामने मैले कपड़ों के समान है। हमारे अच्छे कर्म हमें मोक्ष दिलाने के योग्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता के सामने हमारे भले कर्म कुछ भी नहीं है। इसलिए यदि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, यदि हम परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, यदि हम अनंत काल के लिए स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमें हमारे पापों की माफी चाहिए। और हमारे पापों की माफी हमें कैसे मिलेगी? लंबी लंबी यात्राओं पे जाके, बड़ी बड़ी जगह पे दान पुण्य करके हमें ये नहीं प्राप्त होने वाला। जो बहुत अमीर है, जिसके पास बहुत पैसे हैं, वो सोचता है कि मैं मंदिरों में या गिरजाघर में, चर्च में, गुरुद्वारा में जाके मैं बहुत दान पुण्य करूंगा, मैं सोना दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और अपने दान पुण्य से वो परमेश्वर को खरीदना चाहता है। लेकिन परमेश्वर को खरीद नहीं सकते, हम अपने धन से हम उसे खरीद नहीं सकते। और जो गरीब है वो सोचता है कि मैं सेवा करके मैं शायद मैं प्रभु को प्रसन्न कर सकता हूं, लेकिन अपने कर्मों से, अपनी सेवा से भी हम प्रभु को अपनी मुक्ति के लिए हम प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें हमारे पापों की माफी चाहिए, और परमेश्वर ने हमारे पापों की माफी के लिए हमारे लिए एक जरिया बनाया है, और वो जरिया सिर्फ और सिर्फ क्रूस है। सिर्फ और सिर्फ वो क्रूस है जिस क्रूस पर पवित्र मेमना प्रभु यीशु मसीह बलि चढ़ाया गया, जिसका लहू बहाया गया, जिसे कीलों से ठोका गया, जिसके मुंह पर थूका गया, जिसने हमारे लिए कोड़ों की मार खाई। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम मुक्ति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और यही परमेश्वर का हमारे लिए आज बुलावा है। उसका बुलावा हमारे लिए ये है कि हम कुछ समय शांत हो जाएं और अपने जीवन के बारे में सोचें। मेरा जीवन किस तरफ, किस दिशा में मेरा जीवन जा रहा है? क्या मैं प्रभु की ओर जा रहा हूं या मैं प्रभु से दूर जा रहा हूं? यदि आप सोचेंगे तो आप यही पाएंगे, अपने पाप के कारण आप और मैं, हम प्रभु से दूर जा रहे हैं। हम प्रभु से जिस दिशा में परमेश्वर है, हम उससे उल्टी दिशा में हम जाते जा रहे हैं, क्योंकि पाप कभी हमें परमेश्वर से मिला नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर यही चाहते हैं हम अपने जीवन के बारे में सोचें, मरने के बाद मेरा क्या होगा। आज इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको सिर्फ यही याद दिलाना चाहते हैं कि आप अपनी आखिरी मंजिल को ना भूलें। आपकी आखिरी मंजिल में कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा। आपका सबसे गहरा मित्र, आपके माता पिता यदि आपसे बहुत प्रेम करते हैं, या आपके रिश्तेदार, या जिनके साथ आप काम करते हैं, कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा। इस दुनिया में अंत में प्रत्येक इंसान अकेला है, और मरने के बाद उसे परमेश्वर के सामने खड़े होना है। और यदि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए हैं, हमारे दिल के दाग धुल गए हैं, तो परमेश्वर हमें स्वर्ग में प्रवेश करवाएंगे, क्योंकि हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। बाइबल कहती कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और भरपूरी का जीवन पाओ। भाइयों बहनों, परमेश्वर हमें आजादी देना चाहते हैं जीवन के चक्रव्यूह से जिसमें इंसान फंसा हुआ है। जीवन के चक्रव्यूह से हमें आजाद करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। इसलिए आज इसी समय यदि आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया है, तो इसी समय आप अपना जीवन प्रभु को दे सकते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना करके आप प्रभु को अपने दिल में आप बुला सकते हैं। और बाइबल बताती है कि हमें मोक्ष प्राप्ति कैसे होती है, यदि हम अपने दिल में विश्वास करें और अपने मुंह से स्वीकार करें कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, तो हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और यहीं इस जीवन में इसी समय हम अनंत काल में प्रवेश कर जाते हैं। आज परमेश्वर का आपके लिए यह न्योता है कि आप अपने जीवन के बारे में सोचें कि मरने के बाद, इस जीवन की यात्रा खत्म होने के बाद आप कहां जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आश्वासन देता है, यदि आपके पास प्रभु यीशु मसीह है तो आपके पास मोक्ष है, आपके पास अनंत जीवन है। और यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं और आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो आपके लिए परमेश्वर यही कह रहे हैं, आप किसके लिए जी रहे हैं? क्या आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं? क्या सिर्फ आप अपने काम के लिए जी रहे हैं? या आप सिर्फ अपने नाम के लिए जी रहे हैं? बाइबल में पौलुस ने कहा, मेरे लिए जीना मसीह और मरना नफा है। यदि मैं जीऊं या मरूं, मैं परमेश्वर के लिए हूं, मैं मसीह के लिए हूं। इसलिए यदि आप मसीह में विश्वास करने वाले हैं, तो फिर भी आप अपने जीवन के बारे में ये सोचें, आप किसके लिए अपना जीवन जी रहे हैं? क्या आप अपना समय, अपना पैसा, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है, क्या आप उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? आज अपने जीवन के बारे में सोचें, आपकी आखिरी मंजिल क्या है और क्या आप अपनी आखिरी मंजिल के लिए तैयार हैं, या आप सिर्फ छोटी छोटी बातों में खोए हुए हैं? निर्णय आपको लेना है, परमेश्वर आपके लिए है, परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दें, मुक्ति पाएं, मोक्ष पाएं, भरपूरी का जीवन लें और उसका आशीर्वाद पाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको अब से लेके हमेशा तक संभाले और उसकी आशीष आप पर और आपके परिवारों में बनी रहे। आमीन।